अध्याय 11 पवित्र जीवन। हमारा सृष्टिकर्ता हमारे सर्वस्व की मांग कर रहा है। वो हमारे प्रथम और पवित्रतम विचारों को तथा हमारे प्रगाढ़ स्नेह को मांगता है। यदि हम वास्तव में ईश्वरीय प्रकृति के भागी हैं तो उसकी स्तुति लगातार हमारे मन तथा मुख में होगी। हमारी एकमात्र सुरक्षा इसी में है कि हम अपना सर्वस्व उसके सिपुर्द कर दें और निरंतर अनुग्रह में और सत्य की पहचान में बढ़ते जाएं। पवित्र शास्त्र में वर्णित पवित्रता का कार्य संपूर्ण अस्तित्व से है, अर्थात मन, आत्मा तथा देह से। इसमें संपूर्ण संकल्प का तथ्य पाया जाता है। पौलुस की प्रार्थना है कि थिस्सलुनीकियों की मंडली इस भारी वरदान का आनंद लेवे। परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23। धार्मिक जगत में पवित्रता के विषय में एक सिद्धांत प्रचलित है जो स्वयं असत्य है और प्रभाव में भयानक। बहुत सी स्थितियों में लोग पवित्रता का इकरार तो करते हैं पर अपने अंदर असली गुण नहीं रखते। उनकी पवित्रता बात ही बात और इच्छा भक्ति की होती है। वे विवेक और न्याय को ताक में रख देते हैं और संपूर्णतः भावनाओं पर निर्भर करने लगते और अपने पवित्रताई के दृढ़ दावों की बुनियाद उन उमंगों पर डालते हैं जो कभी उनके अनुभव में आई हों। वे अपने पवित्रताई के दृढ़ दावों को उकसाने में हठी और असक्त हैं। बकबक तो करते हैं परंतु प्रमाण स्वरूप कोई कीमती फल उपस्थित नहीं करते। ये तथाकथित पवित्रजन अपने पाखंडों से अपनी ही आत्माओं को धोखा नहीं दे रहे हैं किंतु बहुतों को, जो यथार्थ में परमेश्वर की इच्छा की अनुकूलता में चलने चाहते हैं, भटकाने का प्रभाव डाल रहे हैं। शायद वे बार बार ये कहते हुए सुने जाएं कि परमेश्वर मेरा पथ प्रदर्शन करता है, परमेश्वर मुझे शिक्षा देता है, मैं पाप रहित जीवन व्यतीत करता हूं। बहुत से जो इस भावना के संसर्ग में आते हैं वे किसी ऐसी अज्ञानता एवं रहस्य का सामना करते हैं जिसको वे बूझ नहीं सकते, परंतु ये वही है जो मसीह के जो सच्चा नमूना है बिल्कुल विपरीत है। पवित्रता का कार्य एक क्रमशः कार्य है। पत्रस के शब्दों में हमारे सामने क्रमानुसार कदम रखे गए हैं। इसी कारण भी तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर, सद्गुण पर, समझ पर, संयम और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल न होने देंगी। दूसरा पत्रस 1:5-8। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। पद 10:11। यहां पर वह स्तर रखा गया है जिससे हमें विश्वास दिलाया जाता है कि हम कभी नहीं गिरेंगे, जो मसीही सद्गुणों की इस योजना को प्राप्त करने में काम कर रहे हैं उनको विश्वास है कि परमेश्वर उनको अपनी आत्मा के वरदानों को प्रदान करने में वृद्धि की योजना को कार्यान्वित करेगा। पवित्रता का कार्य एक क्षण, घंटे या दिन का नहीं है, यह तो अनुग्रह में लगातार बढ़ते रहने का कार्य है। एक दिन में हम नहीं बतला सकते कि हमारा संघर्ष दूसरे दिन कितना दृढ़ होगा। शैतान तो जीवित और सक्रिय है और हमें प्रतिदिन परमेश्वर को जोर से पुकारना चाहिए कि उसका मुकाबला करने को मदद और बल दे। जब तक शैतान का राज्य है तब तक हमें स्वार्थ पर जय पानी, झंझटों पर विजय प्राप्त करनी होगी और ठहरने का स्थान नहीं है। कोई मुकाम ऐसा नहीं जहां पहुंचकर हम कह सकें कि अब हमने पूरी तौर से प्राप्त कर लिया है। मसीही जीवन लगातार आगे कदम बढ़ाने का है। यीशु अपने लोगों को सुनार की और शुद्ध करने वाले की भांति बैठा है और जब उसकी प्रतिभा का उनमें पूर्ण रूप से प्रतिबिंब दिखने लगेगा तभी वे सिद्ध और पवित्र होकर स्वर्गारोहण के लिए तैयार होंगे। मसीही से एक भारी काम की मांग की जाती है। हमको उपदेश दिया गया है कि हम सारी शारीरिक व आत्मिक मलिनता से शुद्ध हों और परमेश्वर के भय में पवित्रता को उन्नत करें। यहीं पर सारे कार्य का बोझ है। मसीही को लगातार काम करना है। दाख की प्रत्येक डाली को दाखलता में से जीवन और बल प्राप्त करना है ताकि वह फल देवे। कोई धोखा न खाए इस विचार को रखते हुए कि परमेश्वर क्षमा करेगा तथा आशीर्वाद भी देगा जब वे उसकी मांगों में से एक को पांवों के नीचे रौंद रहे हैं। पाप को जानबूझकर करने से पवित्र आत्मा की साक्षी देने वाली आवाज खामोश हो जाती है और मानव को परमेश्वर से पृथक कर देती है। धार्मिक भावनाओं से जो कुछ भी आनंद प्राप्त हों, परंतु यीशु उस हृदय में वास नहीं कर सकता जो ईश्वरीय व्यवस्था का अनादर करता है। परमेश्वर केवल उन्हीं का आदर करता है जो उसका आदर करते हैं। जब पौलुस ने लिखा, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करें, 1 थिस्सलुनीकियों 5:23, उसने अपने भाइयों को यह उपदेश नहीं दिया कि ऐसे स्तर की ओर लक्ष्य बांधना जिस तक पहुंचना उनके लिए असंभव था। उसने ऐसी प्रार्थना नहीं की कि उन्हें वे आशीषें मिल सकती हैं जिन्हें देने की परमेश्वर की इच्छा नहीं है। वह जानता था कि जितने मसीह को शांति के साथ मिलने के योग्य समझे जाएंगे उनका चाल चलन शुद्ध व पवित्र होना चाहिए। 1 कुरिन्थियों 9:25-27, 1 कुरिन्थियों 6:19-20। खरा मसीही सिद्धांत परिणामों को विचार करने के लिए नहीं ठहरेगा। वो ये प्रश्न नहीं करता, यदि मैं ऐसा करूं तो लोग क्या सोचेंगे, या यदि मैं वो करूं तो इससे मेरे लौकिक भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बड़ी उत्सुकता से परमेश्वर की संतान जानने की इच्छा करती है कि वो क्या चाहता है कि हम करें जिससे उनके कार्य से उसकी महिमा हो सके। परमेश्वर ने पर्याप्त प्रबंध किया है कि उसके सारे अनुयायियों के हृदय और जीवन ईश्वरीय अनुग्रह के अधीन हों और वे जलते और चमकते हुए प्रकाश पवित्रता का सच्चा प्रमाण। हमारा सृष्टिकर्ता जगत का उजाला था, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो लगातार करुणा के कार्यों में संलग्न रहता था और सर्वसाधारण के रास्ते पर प्रकाश डालता था, तो भी जिनसे वो मिलता जुलता था उनसे उसने कभी नहीं कहा कि मेरी अद्वितीय भलाई, आत्मत्याग तथा दयाशीलता की ओर देखो। यहूदी लोग ऐसे जीवन की कोई प्रशंसा नहीं करते थे। वे उसके धर्म को व्यर्थ समझते थे क्योंकि वो उनकी धार्मिकता के स्तर से मेल नहीं खाता था। उन्होंने निर्णय कर लिया था कि मसीह ना तो आत्मा में ना चरित्र में धर्मी था, क्योंकि उनके धर्म में दिखावटी बातें, सर्वसाधारण में प्रार्थना करना और दिखावे के लिए पुण्य के कार्य करने सम्मिलित थे। पवित्रता का सबसे कीमती फल नम्रता का वरदान है। जब ये गुण हृदय पर पीठासीन होता है तो उसके प्रभावधीन स्वभाव भी उसकी सांचे में ढल जाता है। नतीजा ये होता है कि परमेश्वर की बाट लगातार देखी जाती और अपनी इच्छा उसकी इच्छा के अधीन कर दी जाती है।
जो लोग सचमुच परमेश्वर से संबंध रखते हैं उनमें रोजाना ये फल दिखाई देते हैं। आत्मत्याग, आत्मबलिदान, दयाशीलता, करुणा, प्रेम, धीरज, सहनशीलता और मसीही भरोसा। शायद लोगों के ऐसे कार्य संसार पर प्रकट नहीं, परंतु वे स्वयं प्रतिदिन दुष्टता से युद्ध करते और प्रलोभन तथा असत्य पर सराहनीय जय प्राप्त करते हैं। हार्दिक प्रार्थना तथा निरंतर जागते रहने से प्राप्त हुई शक्ति द्वारा गंभीर प्रतिज्ञाओं का नवीकरण होता और उनका पालन किया जाता है। इन मौन कर्मचारियों के संग्रामों का पता उत्साही पुरुष को नहीं चलता, परंतु वह आंख जो हृदय की गुप्त बात को देखती है, नम्रता के साथ किए हुए प्रत्येक परिश्रम को ध्यान से देखती और स्वीकार करती है। चरित्र का प्रेम और विश्वास का खरा सोना परीक्षण समय ही प्रकट करेगा। जब कलीसिया पर विपत्तियां और कठिनाइयां आती हैं, उस समय मसीह के सच्चे शिष्यों के दृढ़ उत्साह और प्रेम का विकास होता है।
सब लोग जो धर्मी पुरुष के प्रभाव के मंडलांतर्गत आते हैं, वे उसके मसीही जीवन के सौंदर्य तथा सुगंध को मालूम करते हैं, पर वह स्वयं उसमें अनभिज्ञ है, क्योंकि ये उसकी आदतों और इच्छाओं के अनुकूल हैं।
वह ईश्वरीय प्रकाश के लिए प्रार्थना करता है और उस प्रकाश में चलना पसंद करता है। अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पूर्ण करना वो अपनी रोटी पानी समझता है। उसका जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है, तो भी वो घमंड नहीं करता। वह उसका उसको ज्ञान है। परमेश्वर नम्र व सुशील लोगों पर जो स्वामी के पगों का अनुकरण करते हैं मुस्कुराता है। स्वर्गदूत उनकी ओर आकर्षित होते हैं और उनकी राह में देर तक रहना चाहते हैं। हो सकता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों तथा भले कामों को प्रधानता देने वालों की दृष्टि में वे सुयोग्य समझे जाएं, परंतु स्वर्गीय दूत प्यार से उनके ऊपर झुकते हैं और उनके इर्द गिर्द आग की दीवार जैसी बन जाते हैं। दानियेल पवित्र जीवन का एक उदाहरण। दानियेल का जीवन पवित्र किए हुए व्यक्ति का प्रेरणा संपन्न उदाहरण है। इसमें सबके लिए एक पाठ है, विशेषकर युवकों के लिए। परमेश्वर की मांगों का पूर्ण पालन शरीर और मन दोनों के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। नैतिक और मानसिक मर्यादा के उच्च स्तर तक पहुंचने के हेतु ये आवश्यक है कि परमेश्वर से बुद्धि व शक्ति मांगी जाए और जीवन की सारी आदतों में कड़ी संयमता बरती जाए।
दानियेल का चलचलन जितना निर्दोष था, उतनी ही अधिक घृणा उसके विरुद्ध शत्रुओं द्वारा उकसाई गई, क्योंकि वे उसके चलचलन में अथवा कर्तव्य पालन में कोई दोष न ढूंढ सके, इसलिए वे क्रोध के मारे पागल हो गए। तब से लोग कहने लगे, हमें उस दानियेल के परमेश्वर को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। दानियेल 6:5। सारे मसीहियों के लिए वहां पर कैसा उत्तम पाठ प्रदर्शित किया गया है। दिन प्रतिदिन दानियेल पर ईर्ष्या की तीव्र दृष्टि लगी रहती थी। घृणा द्वारा ही यह दृष्टि तीव्र हो गई थी, तो भी उसके जीवन के किसी शब्द या कर्म से वे उसमें दोष न ढूंढ सकें। तो भी उसने पवित्रताई का कोई दावा नहीं किया, बल्कि वो काम किया जो अत्यंत सुंदर था। उसने नमक लाली और समर्पण का जीवन व्यतीत किया।
अब सम्राट के पास से हुक्म निकलता है। दानियेल अपने शत्रुओं के नाश करने वाले से परिचित हो जाता है, परंतु वो अपना रत्ती भर भी नहीं बदलता। शांति के साथ वो अपना कर्तव्य का निवारण करता है और प्रार्थना के नियत समय में अपनी कोठरी में जाकर और खिड़कियों को यरूशलेम की ओर खोलकर वो अपनी प्रार्थनाओं को स्वर्ग के परमेश्वर के सामने उपस्थित करता है। इस कार्यवाही से मानो वो निर्भय होकर घोषणा करता है कि किसी सांसारिक शक्ति को अधिकार नहीं कि उसके और परमेश्वर के बीच में आकर बतलाए कि प्रार्थना किससे करनी चाहिए और किससे नहीं। सिद्धांत का पुतला, वो आज मसीही धैर्य और विश्वस्तता का संसार के सामने प्रशंसा योग्य उदाहरण है। संपूर्ण हृदय से वो परमेश्वर की ओर फिरता है, यद्यपि वो भली भांति जानता है कि उसकी भक्ति का मूल्य मृत्यु है। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियेल को लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियेल से कहे, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है सोई तुझे बचाएगा। प्रातः सम्राट ने सिंहों के गढ़े की ओर जल्द की और पुकार कर कहा, हे दानियेल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा नहीं सका है? तब नबी की वाणी उत्तर में सुनाई दी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरी भी मैंने कुछ हानि नहीं की।
तब राजा ने दानियेल के विषय में बहुत आनंदित होकर उसको गढ़ में से निकालने की आज्ञा दी, और दानियेल गढ़ में से निकाला गया और उसमें हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। पद 22:23। इस प्रकार परमेश्वर के दास का छुटकारा हुआ, और वो जाल जो उसके बैरियों ने उसके नाश के लिए बिछाया था उन्हीं की बर्बादी का कारण सिद्ध हुआ। राजा की आज्ञा पर वे सिंहों के गढ़ में डाले गए और जंगली जंतुओं ने उन्हें तुरंत ही चट कर दिया। जब 70 वर्ष की बंधुआई की समाप्ति का समय आ पहुंचा, तो दानियेल का मन यर्मया की भविष्यवाणी पर अत्यंत व्याकुल हुआ। दानियेल परमेश्वर के सामने अपनी स्वामी भक्ति का ढिंढोरा नहीं पीटता, बजाय पवित्र और निष्पाप होने का दावा करने के ये माननीय नबी अपने को इज़राइल के पापियों में गिनता है।
जो बुद्धि परमेश्वर ने उसको दी थी, संसार के बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि से इतनी उच्च कोटि की थी, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश दोपहर को छोटे टिमटिमाते हुए तारे से अधिक चमकदार होता है। तो अभी ध्यान दीजिए कि इस पुरुष के मुंह से निकली प्रार्थना पर स्वर्ग की भारी कृपा हुई है। अत्यंत नम्रता से वह आंसू बहा बहाकर तथा हृदय को चूर चूर कर वो अपने और अपनी कौम के लिए विनती करता है। वो अपनी दया को परमेश्वर के प्रताप तथा वैभव को स्वीकार करता है।
दानियल प्रार्थना कर ही रहा है कि जिब्राइल दूत स्वर्गीय दरबार से तेजी से उड़ता हुआ उसके पास ये कहने आता है कि तेरी प्रार्थनाएं सुनी गईं और उनका उत्तर दिया गया है। ये सामर्थी दूत भेजा गया है कि उसको योग्यता और ज्ञान प्रदान करे और उसके सामने भविष्य के युगों के रहस्य खोले। इस प्रकार जब वह उत्कंठित हो सत्य को जानने तथा बूझने की चिंता में था, दानियल स्वर्ग के नियुक्त दूत के संसर्ग में लाया गया। उसकी प्रार्थना के उत्तर में दानियल को न केवल प्रकाश और सत्य ही प्राप्त हुआ, जिनकी उसको और उसकी जाति को अत्यंत आवश्यकता थी, अपितु भविष्य की घटनाओं का एक दृश्य, यहां तक कि मसीह के आगमन तक का दृश्य भी दिखलाया गया। जो पवित्रताई का दावा तो करते हैं और शास्त्रों की ढूंढांड करने की कोई इच्छा नहीं रखते या परमेश्वर के संग प्रार्थना में कुश्ती नहीं लड़ते कि बाइबल के सत्य की स्पष्ट समझ प्राप्त हो, वे जानते नहीं कि सच्ची पवित्रता है क्या चीज। दानियल परमेश्वर के संग बातचीत करता था, स्वर्ग उसके सामने खुल गया, परंतु जो सम्मान उसको दिया गया वो सब नम्रता और उत्साहपूर्ण कोशिश का फल था। जो तन मन से परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं वे उसकी इच्छा के ज्ञान के लिए भूख व प्यास प्रकट करेंगे। परमेश्वर सत्य का कर्ता है, वह अंधेरी समझ को प्रकाशमान करता है और सत्य को जिसे उसने प्रकट किया है मानव बुद्धि को ग्रहण करने तथा समझने की शक्ति देता है।
जगत के सृष्टिकर्ता ने जिन महान सत्यों को प्रकट किया है वे उनके लिए हैं जो सत्य की ऐसी तलाश करते हैं जैसे छिपे हुए धन की। दानियल विद्ध हो गया था, उसका जीवन अन्य जाति के दरबार के आकर्षणों के दरमियान से होके गुजरा था। उसका मस्तिष्क भारी साम्राज्य की कार्यवाहियों से दबा हुआ था, तो भी वह इन सबको एक ओर करके अपनी आत्मा को परमेश्वर के सामने दुखी करता और परम प्रधान के मनोरथों के ज्ञान की खोज करता है और उसकी प्रार्थनाओं के उत्तर में स्वर्गीय दरबार से उनकी खातिर जो अंतिम दिनों में रहते हैं प्रकाश व ज्ञान पहुंचाया गया। तब हमको कितने उत्साह के साथ परमेश्वर को ढूंढना चाहिए ताकि वह हमारी बुद्धि को खोले कि हम उन सत्यों को जो स्वर्ग से भेजे गए हैं समझ सकें। दानियल परम प्रधान का उत्साही सेवक था, उसकी चिरजीवी अपने स्वामी के लिए शुभ कार्यों से भरपूर थी। उसके पवित्र आचरण व अडिग स्वामी भक्ति की बराबरी केवल उसके हृदय की नम्रता व सुशीलता ही कर सकती है। हम फिर कहते हैं, दानियल का जीवन सच्ची पवित्रता का प्रेरणापूर्ण उदाहरण है। जिनकी परमेश्वर कद्र करता है उनको परखता भी है। जब हमें परीक्षाओं को सहन करना होता है तो इस तथ्य से सिद्ध होता है कि प्रभु येशु हम में कोई ऐसा कीमती आभूषण देखता है जिसको वह विकसित करना चाहता है। यदि वह देखता है कि हम में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे उसके नाम की जय हो, तो वह हमको शुद्ध करने में समय भी नष्ट न करेगा। हम कांटे उटकटारों को छाटने में विशेष कष्ट नहीं उठाते। मसीह बेकार पत्थरों को अपनी भट्टी में नहीं डालता, मूल्यवान धातु ही को वह परखता है।
जिन लोगों को परमेश्वर चाहता है कि वे जिम्मेदारी की जगह पर रखे जाएं, तो वह दयाधीन उनके छिपे हुए दोषों को प्रकट करता है कि वे अंदर देखें और अपने हृदय के पेचदार आवेगों तथा अभ्यासों की समालोचना करें और बुराई को पहचानें। इस प्रकार वे अपने स्वभाव को और आचार विचार का सुधार कर सकते हैं। प्रभु दूरदर्शिता द्वारा मनुष्यों को ऐसे स्थान पर लाता है जहां वह उनकी नैतिक शक्तियों की जांच कर सके और उनके काम करने का अभिप्राय प्रकट कर सके, ताकि वे अपने अंदर की भलाई को सुधार सकें और बुराई को दूर कर सकें। परमेश्वर अपने दासों को चाहता है कि वे अपने हृदय की नैतिक बल से परिचित हों। इसको करने के लिए बहुधा वह दुख की आग उन पर आने देता है,
ताकि वे स्वच्छ हो जाएं। पर उसके आने का दिन कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है, और वह रूप को लाभ निहारा और शुद्ध करने हारा बन बैठेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे की नाई निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। मलाकी 3:2-3।
परमेश्वर अपने लोगों का मार्गदर्शन कदम ब कदम करता है। वह उनको भिन्न भिन्न लक्ष्य पर लाता है जो उनके हृदय की स्थिति के दर्शक हैं। कुछ लोग एक बात को सह लेते हैं पर दूसरी बात पर गिर जाते हैं। प्रत्येक अगले कदम पर हृदय की जांच की जाती है और उसका और कड़ी तरह से इम्तहान किया जाता है। यदि परमेश्वर के लोग इस सीधे सच्चे कार्य के विरुद्ध हों तो उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि उन्हें इस गलती पर विजय पाने का प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा परमेश्वर इनको अपने मुंह से निकाल फेंकेगा। जितना जल्दी हम अपनी अयोग्यता की पहचान लें और परमेश्वर की विद्वत्ता के मार्गदर्शन में चलने को स्वीकार करें तो वो हमारे संग काम कर सकता है। यदि हम अपने आप से स्वार्थ को त्याग कर दें तो वो सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। परमेश्वर की स्वीकृति का आश्वासन चाहने वालों को परामर्श। आपको कैसे पता लगेगा कि परमेश्वर ने आपको स्वीकार कर लिया है? उसके वचन को प्रार्थना के साथ पढ़िए। किसी दूसरी पुस्तक के कारण उसे एक ओर ना रख दीजिए। ये पुस्तक पाप के विषय में दोषी ठहराती है। ये स्पष्टता से मोक्ष मार्ग दिखलाती है। ये आशापूर्ण तथा महिमामय प्रतिफल की झलक दिखलाती है। ये आपको एक सामर्थी सृष्टिकर्ता को प्रकट करती है और सिखलाती है कि केवल उसकी असीम दया के कारण आपको मोक्ष की आशा हो सकती है।
गुप्त प्रार्थना की अवहेलना न कीजिए, क्योंकि यही धर्म का प्राण है। उत्साहपूर्ण जोशीली प्रार्थना के साथ आत्मा की शुद्धि के लिए विनती कीजिए। ऐसे उत्साह, ऐसी उत्सुकता के साथ विनय कीजिए जैसे खतरे के समय नाशमान जीवन के लिए की जाती है। परमेश्वर के सन्मुख उस समय तक रहिए जब तक त्राण के लिए अकथनीय अभिलाषाएं आपके हृदय में उत्पन्न ना हो जाए और हृदय में पाप मोचन का संतोषजनक प्रमाण प्राप्त ना हो जाए। यीशु ने आपको परीक्षाओं और कठिनाइयों में परेशान होने को नहीं छोड़ दिया है। उसने उनके विषय में सब बतला दिया है और ये भी बतला दिया है कि जब परीक्षाएं आएं तो धैर्य ना खो दो और ना दुखी हों। मसीह अपने त्राणकर्ता को देखिए और आदत हो जिए। सकते जो भाइयों की ओर से और गाढ़े मित्रों की ओर से आती हैं सबसे कठिन होती हैं, मगर इनका भी धैर्य के साथ सहन करना चाहिए। यीशु यूसुफ की नई कब्र में नहीं लेटा है, वह जी उठा है और स्वर्ग को चला गया है कि हमारे लिए सिफारिश करे। हमारा ऐसा त्राणकर्ता है जिसने हमको इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, कि उसके द्वारा हमको आशा, बल और धैर्य और उसके सिंहासन में उसके साथ एक स्थान प्राप्त हो सके। जब कभी आप उसको पुकारें वो सहायता करने को योग्य और राजी है।
क्या आप उस जिम्मेदारी की जगह है जिसको आप भरे हुए हैं अपने को अयोग्य समझते हैं? यदि ऐसा समझते हैं तो परमेश्वर का धन्य हो। जितना अधिक आप अपनी कमजोरी को महसूस करेंगे उतना ही अधिक आप एक सहायक की खोज करेंगे। ईश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आवेगा। याकूब 4:8। यीशु आपको सुखी और आनंदित देखना चाहता है कि आप अपनी ईश्वर दत्त योग्यता का अच्छा उपयोग करें। फिर परमेश्वर की मदद पर भरोसा रखें कि वो उनको उठाएगा जो आपके भार उठाने में सहायता होंगे। लोगों के कठोर वचनों से आपको कोई हानि ना हो। क्या लोगों ने मसीह के बारे में कठोर शब्द न कहे थे? आप तो गलती करते हैं और हो सकता है कि आप कटु शब्दों को कहे जाने का मौका दें, परंतु यीशु ने कभी मौका नहीं दिया। वो पवित्र, स्वच्छ, निष्कलंक था। इस जीवन में महिमा के राजकुमार से बढ़कर भाग्य की आस न रखिए। जब आपके बैरी देखेंगे कि आप भी बुरा मानते हैं तो वे प्रसन्न होंगे और शैतान भी प्रसन्न होगा। मसीह को देखिए और निर्मल हृदय से उसकी महिमा के लिए काम कीजिए।
अपने हृदय को परमेश्वर के प्यार में रखिए। भावनाएं मात्र पवित्रता का लक्षण नहीं है।
प्रसन्नचित अथवा प्रसन्नता का अभाव कोई प्रमाण नहीं है कि अमुक व्यक्ति पवित्र या अपवित्र है। तत्काल पवित्रता ऐसी कोई वस्तु नहीं है। सच्ची पवित्रता नित्य का कार्य है और जीवन पर्यंत जारी रहेगी। जो नित्य के प्रलोभनों से युद्ध कर रहे हैं, अपनी अपराधी प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं और हृदय और जीवन की पवित्रता की तलाश में हैं, वे पवित्रताई का गर्वीला दावा नहीं करते। वे धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं। उनको पाप अत्यंत घृणामय दिखता है। परमेश्वर हमें हमारे पापों के कारण त्याग नहीं देता। हम गलती भी करें और उसकी आत्मा को दुखी करें, परंतु जब हम पश्चाताप करते हैं और नम्र हृदय से उसके पास आते हैं, तो वो हमें भगा नहीं देगा। रुकावटें हैं जिन्हें दूर होना चाहिए। गलत भावनाओं का पालन किया गया और घमंड, अहंकार, उतावलापन और बुड़बुड़ाहट को जगह दी गई है। ये सब हमको परमेश्वर से दूर रखते हैं। पापों को मान लेना चाहिए। हृदय में अनुग्रह का गहन कार्य होना अवश्य है। जो अपने को कमजोर व निराश महसूस करते हैं, वे परमेश्वर के लिए बलवान पुरुष बन सकते हैं और स्वामी के लिए उत्तम कार्य कर सकते हैं, परंतु उनको उच्च सिद्धांत के बिंदु से कार्य करना चाहिए। उनको किसी स्वार्थपूर्ण प्रभाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए।
कुछ लोग ऐसा महसूस करते प्रतीत होते हैं कि उन्हें पहले परीक्षा काल में रखना चाहिए और परमेश्वर को प्रमाणित कर दिखाना चाहिए कि उनका सुधार हो चुका है, तभी वे उसकी आशीषों के अधिकारी हो सकते हैं। पर ये प्रियजन उसकी आशीष को अभी अभी लेने का दावा कर सकते हैं। उनको उसके अनुग्रह को और मसीह के आत्मा को प्राप्त करना चाहिए कि उनकी निर्बलता में सहायता हो, अन्यथा उनके मसीही चालचलन का निर्माण नहीं हो सकता। यीशु चाहता है कि जैसे भी हैं, पापी, लाचार, आश्रित उसके पास चले आवें। पश्चाताप तथा क्षमा मसीह में परमेश्वर के वरदान हैं। पवित्र आत्मा के प्रभाव के द्वारा हम पाप की ओर से दोषी ठहराए जाते हैं, तभी तो क्षमा की जरूरत को महसूस करते हैं। केवल नम्र लोगों को ही क्षमा मिलेगी, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह ही हृदय को पश्चातापी बनाता है। वो हमारी सारी निर्बलताओं व कमजोरियों से परिचित है, इसलिए वो हमारी सहायता अवश्य करेगा। कभी कभी आत्मा के ऊपर अंधेरा और निराशा छा जाएगा, जो हमको डुबाने की धमकी देंगे, परंतु हमें अपना साहस त्याग नहीं देना चाहिए। हमें अपनी निगाह यीशु पर केंद्रित करनी चाहिए। चाहे महसूसियत हो या न हो, हमको विश्वस्त रूप में प्रत्येक कर्तव्य को निभाने का प्रयत्न करना चाहिए, फिर शांतिपूर्वक परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखना चाहिए।
कभी कभी हमारी अयोग्यता के कारण आत्मा पर भय की सनसनी छा जाएगी, परंतु ये सबूत नहीं है कि परमेश्वर ने अपनी दृष्टि हमारी ओर से पलट ली है अथवा हमने भी ऐसा ही किया है। मस्तिष्क को उमंग, प्रचंडता की किसी हद तक लाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हम जिस शांति व आनंद का अनुभव कल कर रहे थे, शायद आज न करें, परंतु हमें विश्वास से मसीह का हाथ पकड़ना चाहिए और उस पर अंधेरे में भी ऐसा पूर्ण विश्वास रखना चाहिए जैसा उजाले में विश्वास द्वारा उन मुकुटों को देखिए जो जय पाने वालों के लिए रखे गए हैं। त्राण पाए हुओं के आनंद के गीत को सुनिए, सुयोग्य है। सुयोग्य है वो मेमना जो वध किया गया था और जिसने हमारा उद्धार किया है। इन दृश्यों को वास्तविक समझने का प्रयत्न कीजिए। यदि हम अपने मन को मसीह पर और स्वर्गीय संसार पर लगाए रखें, तो हमको परमेश्वर के लिए युद्ध लड़ने में जबरदस्त उत्तेजना व सहारा मिलेगा। सांसारिक घमंड व स्नेह का अधिकार जाता रहेगा जब हम उस उत्तम देश की महिमाओं पर सोच विचार करते हैं जो शीघ्र ही हमारा निवास स्थान होने वाला है। मसीह की अति सुंदरता के सामने सारे सांसारिक आकर्षक पासंग भी नहीं।
यद्यपि पौलुस आखिरकार रूमी बंदीगृह में बंद, आकाश की धूप व वायु से वंचित, सुसमाचार के सतर्क परिश्रम से पृथक था और पल पल में मृत्यु की राह ताक रहा था, फिर भी संदेह नैराश्य को उसने पास नहीं फटकने दिया। उस अंधेरे कारागार से उसने उत्कृष्ट विश्वास और धैर्य से पूर्ण अंतिम गवाही दी
जिसने तत्पश्चात युगों के भक्तों तथा शहीद के हृदय को प्रेरित किया है। उसके शब्द उस पवित्रताई के परिणामों को, जिनका हमने इन पृष्ठों में वर्णन करने की चेष्टा की है, उचित रीति से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि अब मैं अर्घ की नाई उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु, जो धर्मी और न्यायी है, मुझे उस दिन और मुझे ही नहीं, वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, देगा। दूसरा तिमुथियुस 4:6-8।